أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خواتين الأعزاء. مغرب میں ایک بہت مشہور سائیکارٹسٹ نے جو آج بھی زندہ ہے, ہاورڈ سی کنگز ان کا نام ہے. تو جہاں یہ لوگوں کا نفسیاتی علاج کرتے ہیں وہاں انہیں کچھ چھپے ہوئے انسانی فطرت کے چھپے ہوئے پہلو ان کو جاننے کا شوق ہے. جو باتیں انسانی ذہن سلجھا نہیں پاتا یہ ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں. تو ان کا تعلق دلائی لاما کے ساتھ بن گیا جو آج لیونگ دلائی لاما ہے. اور ان کے ساتھ انہوں نے کافی وقت گزارا, صرف اس لیے ہے کہ دلائی لاما کو اسٹڈی کر سکیں اور یہ جان سکیں کہ دلائی لاما کیوں ہیں. ان کو ایک بات پہ حیرت ہوئی کہ دلائی لاما کو انہوں نے انتہائی مطمئن اور خوش انسان پایا. دلائی لاما میں انہوں نے ذہانت بھی پائی اور دلائی لاما کے علم کو انہوں نے بڑا امپریسیو پایا. تو ان کی ایفرٹ یہ رہی کہ میں دلائی لاما کے ساتھ میکسیمم وقت گزاروں اور انہیں بولنے پہ مجبور کروں کوئی ایسا نقطہ انڈر ڈسکشن لے آیا کروں ان کے ساتھ ملاقات میں کہ وہ مجبور ہو جائیں بولنے پر. انہوں نے ہاورڈ سی کنگز نے دلائی لاما کے سامنے ایک کیس رکھا کہ میرے پاس ایک بچہ لایا گیا ہے جو اپنی ایڈولسنٹ ایج میں ہے, لیکن اتنا ینگ ہونے کے باوجود اس کے ذہن میں خودکشی کے خیالات آتے ہیں. ہی شوڈ کل ہمسیلف. دلائی لاما نے ان کی بات سنی اور بڑی سنجیدگی سے کہا کہ مجھے کیا پتا, تو اس آدمی کو بڑا حیرت بھی ہوئی اور ناامید بھی ہوئی کہ میں نے تو یہ کیس ان کے سامنے رکھا تھا کہ یہ مجبور ہو جائیں گے زبان کھولنے پر, اور جب یہ اس کیس کو ڈسکس کریں گے تو میری معلومات میں بہت اضافہ ہوگا میرے پروفیشن کے حوالے سے. تو دلائی لاما نے جب دیکھا کہ ان کو مایوسی ہوئی ہے تو دلائی لاما نے ایک کہکہا لگایا और कहा कि तो बड़ा आसान सा मामला है, तुम लोग मगरिब से ताल्लुक रखते हो और मगरिब की सकाफत में एक बुनियादी चीज ये आ गई है कि हर चीज को लॉजिक और साइंस पर परखते हो, तो ये चीज तुम लोगों के सेकंड नेचर बन गई है। होता ये है कि जब कोई ऐसी चीज सामने आ जाती है जिसको इंसानी अक्ल सुलझा नहीं पाती, या उसकी एक्सप्लेनेशन उसका जहन उसे दे नहीं पाता, तो इंसान में परेशानी लाहक हो जाती है। और दूसरी बात जो दलाई लामा ने कही कि आप लोगों की सकाफत में शऊर और लाशऊर या तहतु शऊर, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, तुम लोगों का इल्म सिर्फ इसी के अंदर घूमता है। तो जो साइकाट्रिस्ट हजरात हैं वो इंसान के हर एक्शन की जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं, इंसान के शऊर में या लाशऊर में या तातु शऊर में। लेकिन बहुत सी चीजों की एक्सप्लेनेशन वहां नहीं मिलती है, तो यूं इंसान में परेशानी का आंसर शुरू होता है, जो फिर उसकी डिग्री बढ़ती रहती है। और कुछ केसेस में ये भी हो जाता है, जैसा केस इन्होंने रेफर किया कि खुदकशी के ख्यालात आते हैं दिमाग में, लेकिन उसकी उसका रूट कॉज यही होता है। तो वहां से दलाई लामा ने बात शुरू की कि इंसान के अंदर जो खुशी है उसका होना बड़ा जरूरी है। चूंकि दलाई लामा का ताल्लुक बुद्ध मत से है, उन्होंने अपने अकायद के मुताबिक इसका जवाब दिया, जो है तो दुरुस्त, लेकिन जितना जवाब दलाई लामा ने दिया, दलाई लामा ने अपने जवाब में बहुत कुछ दूसरों पर छोड़ दिया कि वो आज खुद उसको समझ लें। तो उन्होंने ही कहा कि इंसान की जिंदगी का बुनियादी मकसद खुशी हासिल करना है। ये उनके अकायद के मुताबिक मैं अर्ज कर रहा हूं। हम लोग हमारे अकायद के मुताबिक तो इंसान की जिंदगी का मकसद अपने रब की तरफ रजू रखना है। लेकिन बात वहीं जा पहुंचेगी कि जब हम रब की रजा की जस्तुजू में लग जाते हैं, तो दर हकीकत हम तलाश ये कर रहे होते हैं कि हमें रब मिल जाए, कि उसको हम राजी करना चाहते हैं। जब राजी रब जब राजी हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी दोस्ती हमें अता हो जाएगी। तो जिन लोगों को रब की दोस्ती हासिल हो गई वही लोग ऐसे हैं जो इन रियल सेंस आपको खुश नजर आएंगे, भले उनके पास कुछ ना हो, खाने को रोटी ना हो, पहनने को पूरा कपड़ा ना हो, रहने को मुकम्मल छत ना हो, लेकिन वो बड़े खुश दिखाई देते हैं। तो बात वहीं चली जाती है जो दलाई लामा ने कही थी। तो इल्म की जस्तजू देखी, इस्लाम ने इल्म पर बहुत, इल्म के हसूल पर जोर बहुत दिया। वो तो बहुत ही मशहूर हदीस है, इल्म के हासिल करने के लिए अगर चीन जाना पड़े, वो हदीस बहुत मशहूर है। फिर जंगे बदर जब लड़ी गई तो ये हिजरत का दूसरा साल था और मुसलमानों के माली हालात खासे नाजुक थे। तो जो जंगी कैदी लाए गए जंगे बदर से, तो उनके सामने ऑप्शन जो रखी गई, एक ऑप्शन ये थी कि जो कैश पे ना कर सकें, जंस पे ना कर सकें, वो दो मुसलमानों को पढ़ा दे, लिखना पढ़ना सिखा दे, तो वो आजाद है। इल्म की अहमियत इस्लाम में इतनी ज्यादा है कि वहां रुपया पैसा या माली या मादी चीजों की वैल्यू से कहीं बढ़कर है कि उस माली बहरान में होने के बावजूद ये एक ऑप्शन थी कि जो नहीं दे पे कर सकते वो पढ़ा दें और आजाद हो जाए। दर हकीकत ये इल्म है जो गुत्थियां सुलझा देगा। अब यहां एक सवाल ये पैदा होगा जो महावरतन कहा जाता है कि मुर्गी पहले या अंडा। कि इल्म पहले आएगा या पहले रब की रजा मिलेगी? इसलिए कि इल्म लुदनी तो उस वक्त मिलता है इंसान को जब रब की दोस्ती अता हो जाए। तो इसका जवाब बड़ा सीधा सा है कि ये जो दावत हमें दी गई है रब की तरफ से, गौर व फिक्र की, रब ताला की निशानियों पर गौर करने की, वो दर हकीकत हमें ले जाएगी रब के साथ इश्क और मोहब्बत की तरफ। कि जो जो हम उसकी निशानियों पर गौर करेंगे, तू उसकी अजमत और उसकी कुदरत हम पर आश्कार होगी। और यूं हम उसके इताअत गुजार बंदे बनते चले जाएंगे कि रब का जब एहसास होगा कि वो कितना बड़ा है, सही मायनों में तो उसको हम मैयर नहीं कर सकते कि कितना बड़ा है, लेकिन उसकी अजमत का कुछ एहसास होता है कि वो किस कदर अजीम है, तो हम उसकी बंदगी की तरफ जाएंगे, और जब बंदगी की तरफ जाएंगे तो उसकी रजा की तरफ चले जाएंगे, और उसकी रजा के नतीजे में उसकी दोस्ती अता होगी, और उसके नतीजे में इल्म लुदनी आना शुरू हो जाएगा। और जब वो इल्म आता है तो फिर कोई भी गुत्थी सुलझाने में दिक्कत नहीं होती इंसान को। फिर तो एक सीधा साधा मामला होता है कि आपसे एक सवाल किया गया, किसी ने पूछा, तो आपको सेकंड दो सेकंड लगते हैं, उसके बाद जब आप बोलना शुरू करते हैं तो खुद इंसान को नहीं पता चलता कि ये मैं जो बोल रहा हूं ये तो मैं जानता नहीं था। आसान लफ्जों में यूं कहिए कि फिर इंसान खुद अपने आप से सीखने लग जाता है, जवाब वो दूसरों को दे रहा होता है खुद भी सीख रहा होता है साथ। तो वो सही खुशी का मकाम आ जाएगा। बहुत से सवालात हैं जो रह गए थे लास्ट टाइम भी। ये किसी साहब ने नेपाल एक बच्चे के बारे में पूछा है कि एडॉप्टेड चाइल्ड के बे फॉर्म में वालदैन के नाम की जगह उसके असल वालदैन का नाम लिखवाना चाहिए या उन वालदैन का जिन्होंने एडॉप्ट किया है, असल वालदैन का नाम आना चाहिए बिलखुसूस वालिद का नाम, और गार्डियन के नाम में वो साहब अपना नाम लिख दें जिन्होंने एडॉप्ट किया हुआ है, तो मसला हल हो जाएगा उससे। एक सवाल है कि अगर मुर्शिद दुनिया से पर्दा फरमा चुके हों और उनसे मुलाकात करनी हो तो क्या तरीका है? एक बार कोई नुक्ता था वो मेरे जहन में आ नहीं रहा कि क्या बात क्या थी जिस पर मेरी मुर्शिद साहब से बात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि अगर इंसान हालत कश में जो दुनिया से तशरीफ ले गए हैं मुर्शिद उनसे अर्ज किया जाए कि वो मदद कर दें, तो जवाब आया कि मदद हो जाएगी लेकिन ये उन्हें जहमत देने वाली बात होगी, तो मुर्शिद को जहमत कभी नहीं दी जाती, तो मुलाकात तो उससे भी आगे की बात है, तो ये मुर्शिद पर ही रहने दिया जाए कि वो उनकी रूह जब पसंद फरमाए तो आपसे मुलाकात कर ले, हो जाती है मुलाकात। तो अगर मुर्शिद कामिल है तो फिर किसी न किसी तरह मुलाकात हो जाती है। एक दिन बैठे हुए मुझसे मेरे मुर्शिद साहब ने फरमाया कि मैं जब दुनिया से चला जाऊं तो मुझे ऐसी जगह दफन करना जहां मस्जिद करीब हो, वजू के लिए पानी करीब हो और सड़क करीब हो। और उसके फौरन बाद एक बात बताई जो उस वक्त तो समझ में नहीं आती थी लेकिन आज पता है कि वो क्या था। तो मुझे फरमाने लगे कि अगर कभी तुम्हें मैं सड़क पर चलता हुआ दिखाई दे जाऊं तो मुझे मुखातिब न करना। तो मुलाकात हो जाती है। अगर कभी आपके मुर्शिद जो दुनिया से तशरीफ ले गए हैं कहीं नजर आ जाए तो उन्हें मुखातिब न कीजिएगा कभी। एक साहब का सवाल है कि पंचसूरा के आखिर या दरमियान में कुरान पाक की कुछ खास खास आयात को इकट्ठा करके लिखा होता है और ऊपर हेडिंग होती है हैकल अव्वल, हैकल दोएम, हैकल सोएम, तो ये तकरीबन 7 तक हैं, तकरीबन नहीं हैं ही 7। कुरान पाक की इन आयात को हैकल कहने के पीछे क्या लॉजिक है और इनके रूहानी फजाइल क्या हैं, ये इंशाअल्लाह ताला इसको अगली इतवार में जवाब दूंगा, इसलिए कि इसका जवाब वक्त ज्यादा ले जाएगा और है नहीं इतना वक्त, इसको यहीं रख रहा हूँ, अगली इतवार इंशाअल्लाह इसका जवाब दे दूंगा। गालिबन सूरह मुज़म्मल पर पहले बात हो चुकी हुई है, तो देख लीजिए अगर साबर साहब या टिप्पू साहब से कह के जो नशिस्त का नंबर और जिस किताब में छपा हुआ है उसका नाम ले लें, सफ़ा नंबर बता देंगे, या रिकॉर्डेड हिस्सा उतना ही आपको दे देंगे, इनसे ले लीजिए। इस पर खासी तफसील से बात हुई भी है। ये सूरह अराफ की आयत नंबर 32 का किसी सामने लिखा है, ये कहो किसने हराम किया है अल्लाह की जीनत को जो उसी ने पैदा की है अपने बंदों के लिए, और किसने हराम की हैं पकीदा चीजें खाने पीने की, कहो ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जो ईमान लाए दुनियावी जिंदगी में भी और खालिस्तन आखरत में भी। इस तरह तफसील से बयान करते हैं हम अपनी आयात और उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं इस आयत की रोशनी में कि असल इस्लाह लोगों की ज्यादातर जोर दिया है मुआश, घर और सवारी से, नहीं मैं आपकी तहरीर असल में समझ नहीं पा रहा और मैं कुछ लिखते लिखते आप कुछ चीजें मिस कर गए हुए हैं, अगर इस सवाल को दोबारा लिख दें तो मैं आपके जो सवाल है उसकी रोशनी में इसकी तशरी कर दूंगा आयत की। फिर दूसरा सवाल नी साहब का है कि किसी का रिस्क निपातुला हो और वो मुसलसल स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहता हो तो रब ताला से कैसे रिस्क की वसत फरमानी ले सकता है। इस मौजू पे भी बहुत मरतबा बात हुई। देखिए इसमें चंद एक चीजें याद रखिएगा। कि इंसान जिस चीज के पीछे भागता है वो चीज उससे आगे आगे भागती है, मिलती नहीं है। और इंसान जिससे पीछा छुड़ाता है, दूर भागता है, वो चीज उसके पीछे दौड़ी चली आती है। तो हम रिस्क के पीछे जितना भागेंगे, रिस्क हमसे उतना दूर भागेगा, और जितना हम उसके बारे में बेफिक्र हो जाएंगे, उतना वसी रिस्क मिलता जाएगा। यहाँ मैंने एक पुराना किस्सा अपना अर्ज किया था, बहुत पुराना, एक साहब ने मुझसे कहा कि तुम्हें बहुत शौक है औली अकराम से मिलने का, तो चलो मैं तुम्हें एक वली अल्लाह के पास ले चलूं। और ये वो दौर था जब मैंने जॉब नई शुरू की थी, और जॉब के शुरू करते ही मेरे अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो गई जो आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्ट्रांग होती गई, और मैं रब ताला से एक ही दुआ मांगता था कि या अल्लाह मुझे इतना वसी रिस्क अता फरमा दे कि मेरी जायज़ ज़रूरियात पूरी होके बच रहा करे, और मैं उससे तेरे बंदों की खिदमत किया करूं। ये 66 की बात है। तो वो साहब मुझे उनके पास ले गए, यहां माल रोड पर अगर जीपीओ से कैंटोनमेंट की तरफ जाए तो लेफ्ट हैंड पर रीगल का जो बस स्टॉप है उसकी बैक पर डॉक्टर जहीर बैठते थे। मिला उनसे तो उन्होंने नाम पूछा, तो जो माँ बाप ने नाम रखा था वो तो सरफराज अहमद था, तो मैंने वही नाम बताया कि मेरा नाम सरफराज अहमद है। तो कुछ देर सोच में डूबे रहे और सर उठाया, कहने लगे आप सैयद हैं? तो मैंने कहा जी हाँ। अल्लाह आपका भला करे। तो फरमाया कि मैंने आपकी दरख्वास्त, मैंने उनसे भी यही अर्ज किया, लेकिन वो दुआ का अगला हिस्सा मैंने छोड़ दिया कि मेरे और मेरे रब के दरमियान है। मैंने उनसे ही कहा कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे वसी रिस्क अता फरमाए। तो कहने लगे कि तुम्हारी एप्लीकेशन मैंने ऊपर भेज दी, जब जवाब आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो कई हफ्तों के बाद टेलीफोन मैंने किया, फरमाने लगे जवाब आ गया, आप आ जाइए, मैंने आपके लिए चाइना से असली जैस्मिन टी मंगवाई है और बर्फी मंगवाई है, वो आपका इंतजार कर रही है। तो मैं गया, तुम्हारा जो सोफा था 3 सीटर, उस पर दो आदमी मुझसे पहले ही बैठे थे, उनको तो पहचान गया कि अखबार में तस्वीरें देखता था, एक इब्रोही थे और दूसरे यूनिफॉर्म में ब्रिगेडियर के रैंक्स के साथ, तो वो थे मोहम्मद जियाउल हक। तो पता चला कि ये उनके बहुत ही पक्के और करीबी मुरीद हैं। तो तीसरी जो सीट खाली थी उसके सामने टेबल पर भाप उठती हुई जैस्मिन टी का कप था और साथ एक छोटी सी प्लेट में जरा सी बर्फी थी। वो वाकई जैस्मिन टी असली थी और वो बर्फी भी कमाल की जायके वाली। तो मुझे कहने लगे सैयद साहब जरा एक बात तो बताइए। मैंने कहा जनाब, अब ये उनकी बातें दोनों बहुत बड़ा लेसन है। तो कहने लगे आप मुंतकिम मिजाज तो नहीं है? तो मैंने कहा कि हजूर अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इंतकाम लेना तो बहुत दूर की बात है। जिस दिन से होश संभाली है आज तक कभी भूले से ख्याल भी नहीं आया कि मैं अपने दुश्मन को बुरा ही कह दूं। तो कहने लगे फिर तो सब खैर ही खैर है। ये आपके सवाल का जवाब इन्हीं बातों में मिल जाएगा आपको पूरा। और कहने लगे अब एक सवाल का जवाब दे दे। मैंने कहा हुक्म कीजिए आप। سید صاحب یہ رزق خالق ہے یا مخلوق؟ تو میں نے عرض کیا کہ obviously مخلوق ہے. تو کہنے لگے سید صاحب پھر آپ کا کیا کام ہے کہ آپ مخلوق کے پیچھے بھاگیں؟ یہ تو مخلوق ہے جو آپ کے پیچھے بھاگے گی. تو میں ایک دم سے اٹھا, میں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجیے, مجھے اپنے دعا کا جواب نہیں چاہیے. اب تو بات یہ ہے کہ ایک تو ڈاکٹر ظہیر صاحب نے یہ جو فرمایا کہ منتقم مزاج تو نہیں, تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے رزق میں کمی کا باعث انتقام بن جاتا ہے, یا ہم انتقام لینے کی سوچتے ہیں, اپنے دشمن کو برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ ایک تو ان کی بات سے یہ مجھے اندازہ ہوا, اور دوسرا بڑی obvious بات انہوں نے کہہ دی کہ اگر رزق مخلوق ہے تو پھر اس کے پیچھے میں کیوں بھاگوں, وہ کیوں نہ میرے پیچھے بھاگے. اور رزق اللہ سے لینے کا کئی بار یہاں میں ذکر کر چکا, کہ اپنے رزق میں باوجود اس کے کہ رزق بہت کم ہو, کتنا ہی کم کیوں نہ ہو, دوسروں کو اس میں حصے دار ضرور بنائیے. اور اگر رزق میں اضافہ کسی طرح نہ ہوتا ہو تو پھر انسان کو چاہیے کہ اپنی سسٹرز کو جب بھی ملے کچھ نہ کچھ دے دے, رزق کھل جائے گا. ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے آپ کو جنہوں نے اپنے بزنس میں رب تعالیٰ کو پارٹنر بنایا ہوا ہے, وہ ڈیکلیئرڈ ہے کہ رب تعالیٰ میرا اتنے پرسنٹ پروفٹ کا حصہ دار ہے. تو وہ اپنے پروفٹ میں سے اتنا حصہ نکالتے ہیں اور رب کے نام پر دے دیتے ہیں. تو یہ تو ایک طریقہ ہے کہ رب سے وسیع رزق وصول کیسے کیا جائے, لیکن دینے کا انداز اصل میں بہت کاؤنٹ کر جائے گا. کہ ہم کس انداز میں کسی کو دیتے ہیں یہ بہت میٹر کرتا ہے. ایک تو بڑی سیدھی بات ہے کہ ہم اسی چکر میں پڑے رہ جاتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے, یہ میرا مخالف ہے, تو میں مخالف کو کیوں دوں؟ وہ مشکل وقت میں آیا ہوا, میں کیوں اس کی مدد کرنے جاؤں؟ اور اگر کبھی ہم حوصلہ کر بھی لیں کہ اپنے بدترین مخالف کو مشکل میں دیکھ کے اس کی مدد کرنے کے لیے پہنچیں, تو اس انداز میں اس کی مدد کریں گے کہ اسے احساس ہو جائے کہ میں تو اس کا دشمن تھا اور اس نے اس دشمنی کے جواب میں میرے ساتھ یہ نیکی کی. یہ غلط رویہ ہوگا ہمارا اگر ہم یہ کریں گے. تو خاص طور پہ بدترین دشمن کی خدمت اور اس کی مدد تو اس انداز میں کیجیے کہ اسے احساس ہی نہ ہو کہ آپ اس کی مدد کر گئے ہیں, اور عام آدمی کو بھی دیتے ہوئے اس طرح سے دیں کہ خود آپ کو پتا نہ چلے کہ میں نے کس کو دے دیا ہے. تو یہ جو عاجزی ہے, اس کو داتا صاحب نے بڑے خوبصورت لفظوں میں بیان کیا ہوا ہے کہ تم دوسروں کی خدمت اس طرح سے کرو کہ خود خدمت لینے والا یہ سمجھے کہ اس نے تم سے خدمت لے کر تم پر احسان کیا ہے. تو یہ جو انداز ہے कि जिसकी आप खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि दे तो हम किसी को नहीं सकते कि हम खुद मोहताज हैं रब के, तो जो कुछ हमारे हाथ से जा रहा है वो खिदमत कर रहे हैं हम दूसरे की, दे नहीं रहे कि हम देने की पोजीशन में नहीं हैं। तो जिसकी हम खिदमत कर रहे हैं उसकी इस अंदाज में खिदमत कर दी जाए कि उसके अंदर बजाय शर्मिंदगी के एक तफाखर का जज्बा पैदा हो, फख्र का जज्बा पैदा हो उसके अंदर, तो उसको ऐसा लगे कि जैसे उसने आपसे अपना हक वसूल किया है। अगर हम ये कर सकें तो एक बात तो तय है कि इंसान को रिस्क की कमी नहीं आती है। ये किसी ने सवाल पूछा है कि रूहानियत में मंदरजा ज़ैल टर्म्स की डेफिनेशन और डिफरेंस बयान करें। मदरसे की बैत ये दर हकीकत जिस सिलसिले में हम बैत होते हैं, और चूंकि पुराने जमाने में सिलसिले खानकाहों खानकाही निजाम के तहत ही चलते थे, तो इंसान जब उस किसी खानकाही निजाम के मदरसे में दाखिल होता था तो उस सिलसिले में वो बैत हो जाता था। ये टर्म उससे निकली थी, ओरिजिन इसका वो है कि हम फला मदरसे, जैसे आजकल हमारे यहाँ जामिया अशरफिया है, या ये तो चूंकि खालिस्तन अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन गए हैं, इससे पहले जहाँ रूहानी तरबियत होती थी खानकाही निज़ाम कहलाता था वो, तो वहाँ जो सिलसिला था वो उसके रेफरेंस से जाना जाता था कि मदरसे की बैत है। तो दरहकीकत वो रेफर करते हैं सिलसिले को कि फला सिलसिले में बैत हैं। अब ये टर्म नहीं इस्तेमाल होती, इसकी जगह मदरसे इसकी सिलसिले की बैत की टर्म शुरू हो गई है। रूहानी बैत हमारे यहां इल्म मिलने का एक सिलसिला ये है कि जो साहब दुनिया से जा चुके हैं, जैसे जनाब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, जनाब हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, दाता साहब हैं, हजरत मियां मीर साहब हैं, तो अगर मेरे कोई मुर्शद नहीं है तो मैं इनके मजार पे जाता हूं फातिहा पढ़ के उनकी रूह को मुखातिब करके ये अर्ज करता हूं कि मेरे कोई मुर्शद नहीं है, मैं आप ही के हाथ पर बैत हो रहा हूं, तो ये रूहानी बैत कहलाएगी। ये असल में सिलसिला अवैसिया कहलाता है कि इल्म जो है फिर जिंदा मुर्शद से नहीं मिलता बल्कि रिमोट तरीके से ऐसी हस्ती से मिलता है जो दुनिया में नहीं है, वहां से अता होना शुरू हो जाता है, तो सिलसिला अवैसिया कहलाता है वो, और इल्म के हसूल का अवैसिया तरीका है वो। तो इसी तरह ये रूहानी बैत है कि वो साहब जो दुनिया में मौजूद नहीं है, अगर हमने उनके उनको मुखातिब करके उनकी रूह को मुखातिब करके ये अज़्म किया कि हम आपके हाथ पर बैत हैं, तो वो रूहानी बैत कहलाएगी। इससे मुराद वो नहीं है कि हम ये कहें कि सब चूंकि रूहानियत का इल्म आपसे लेना है इसलिए ये बैत जो हम कर रहे हैं ये रूहानी है। जब हम बैत हो जाते हैं किसी के हाथ पे, तो वहाँ ये तशखीस नहीं रहती कि दुनियावी इल्म है या रूहानी इल्म है। बैत करने वाला पाबंद हो जाता है इस बात का कि वह अपने मुर्शद की हर बात को बगैर कोई बिला हिलो हुज्जत बगैर क्वेश्चन किए वो उसको ओबे करेगा, और जो बैत ले रहा है वो इस बात का पाबंद हो जाता है कि वो बैत करने वाले की तमाम तर तबीयत करेगा जिसमें दुनियावी तरबियत भी शामिल है और रूहानी तरबियत भी शामिल है, अखलाकी तरबियत भी शामिल है। तो इसमें वो तशखीस नहीं रहती है। ये हम लोग तशखीस बनाए हुए हैं कि रूहानी बैत और है, दूसरी बैत और है। वो रूहानी बैत से मुराद ये है। तो इन्होंने दूसरा सवाल किया है कि मंदरजा ज़ैल टर्म्स को एलेबोरेट कर दीजिए। पढ़ाई मिलना या आता होना, बहुत सिंपल बात है भाई कि पढ़ाई मिलना या आता होना से मुराद ये है कि आपके मुर्शद ने आपसे आपको ये हुक्म दिया कि मियाँ ये पढ़ा करो, तो वो पढ़ाई अता हो गई या पढ़ाई मिल गई आपको, तो किसी तरह भी इसे बयान कर लीजिए। इल्म अता होना, ये इस मौजू पे कई बार बात हुई कि एक इल्म तीन तरह से आएगा ना आपको। तो एक्वायर्ड नॉलेज है जो आप किताबें पढ़ के बातें सुन के हासिल करते हैं, वो एक्वायर्ड नॉलेज है। उसके अंदर इंसान एक हद से आगे नहीं जा पाता। जहां किसी ने सवाल पूछा इंसान की गाड़ी ठप हो गई। एक है जो आप अर्न करते हैं, उसके लिए रियाजत करते हैं आप, रियाज है उसमें, उसमें चिल्ले हैं, मुजाहदे हैं, जिंदगी को आप ढालते हैं कुरान और सुन्नत के तालीम के मुताबिक, रब के करीब जाते हैं। जो अभी मैंने अर्ज किया कि रब की रजा, फिर उसकी दोस्ती, और फिर उस दोस्ती के नतीजे में अल्लाह की एक रहमत कि इंसान को इल्म लुजूनी अता होता है, वो असल इल्म है। और एक तीसरी चीज ये है कि मुर्शिद किसी बात पे खुश हो गए, आपसे राजी हो गए, उन्होंने आपको अता कर दी, लेकिन वो बिल्कुल इसी तरह है कि अगर मैं जॉब नहीं कर रहा, मेरी इनकम नहीं है, कोई रोजगार का सिलसिला नहीं है, तो कोई साहब आए और आके मुझे एक अमाउंट देगा कि ये रख लीजिए, आप खर्च कर लीजिएगा, तो मैं कितना ही उसे संभाल के क्यों ना खर्च करूं, खत्म हो जाएगी वो रकम। तो अता का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इल्म अता तो हो गया, लेकिन वक्त के साथ साथ वो कम होना शुरू हो जाता है, बजाय इसके कि वो बढ़े। अता कर दी जाती है, वो तो मुर्शिद अता कर देगा उसको, ये इल्म अता करना वो कहते हैं, लेकिन ये ज्यादा कोई, हो सकता मैं गलत कह रहा हूं, मेरे नजदीक कोई ज्यादा पसंदीदा जरिया नहीं है इल्म हासिल करने का। इल्म वही जिसको आप अर्न करते हैं, اپنی محنت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کر کے, اللہ کی بندگی کر کے اس کے قریب جا کے, تو علم وہی, ادروائز اسی سوال کا ان کا تیسرا حصہ ہے کہ کیا مرشد صرف ایک شخص کو یعنی اپنے خلیفہ کو علم عطا کرتا ہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھیے, ضروری نہیں ہے کہ انسان کے ایک ہی خلیفہ ہوں, کئی ایک خلیفہ ہوتے ہیں. خود بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کئی خلیفہ تھے. جناب خواجہ غریب نواز صاحب کے, ان کی زندگی میں ایک ہی خلیفہ ہوئے, جناب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. جناب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے انتقال کے کئی سو سال کے بعد جناب خواجہ غریب نواز صاحب کے دوسرے خلیفہ ہوئے جناب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب. تو یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی خلیفہ ہوں. وہ سلسلہ صابریہ میں یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اس میں عام طور پہ ایک ہی خلیفہ ہوتے ہیں. اور علم جو ہے, علم خلیفہ کی تو تربیت اس انداز میں کی جاتی ہے کہ اس نے بعد میں ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں, اور جیسا وہ شاگرد ہوگا اس کو دیکھ کے لوگ اندازہ لگائیں گے کہ اس کے مرشد کیا تھے. تو اگر ان کے اندر جھول ہیں مختلف چیزوں کے, تو پھر گالیاں مرشد ہی کو پڑیں گی, ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اس لیے اس کی تربیت پر خاص توجہ دی جاتی ہے کہ اس کی تربیت اس انداز میں کر دی جائے کہ اس میں جھول نہ رہیں. لیکن علم تو ہر اس شخص کو دے دیا جائے گا جو مرشد صاحب کے پاس علم کے حصول کی نیت سے جائے گا. اب جب ہم علم کے حصول کی نیت سے جاتے ہیں تو بھی اس کے اندر بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں. ہمیں شکایت ہوتی کہ مرشد صاحب نے ہمیں اتنا نہیں دیا جتنا فلاں کو دیا, ویسا علم نہیں دیا جیسا فلاں کو دیا. وہ مرشد کا فالٹ نہیں ہے, وہ جانے والے کا فالٹ ہے. اگر میرے جیسا اپنے مرشد صاحب کے پاس چلا جائے کہ میں نے علم آپ سے لینا ہے, تو مرشد تو ایک منٹ میں بھانپ جائیں گے کہ سرفراز صاحب تو اس نیت سے آئے ہیں میرے پاس کہ مجھے علم مل جائے تو میں لوگوں پہ روب جھاڑتا پھروں کہ میں صاحب علم ہوں, یا سرفراز صاحب کی نیت تو یہ ہے کہ مجھے کچھ علم عطا ہو جائے تو میں بیٹھ جاؤں اور لوگ آئیں میرے پاس ان سے پیسے بٹورتا رہوں, یا میرے دنیاوی کام آسان ہو جائیں. تو مرشد تو بھانپ جائیں گے, چونکہ آپ نے علم کے خواہش کا اظہار کیا ہے تو وہ علم دیں گے ضرور, ورنہ وہ کنجوس کہلائیں گے پھر اللہ کے نزدیک, وہ بخیل کہلائیں گے. لیکن وہ اسی انداز کا علم آپ کو دیں گے جس انداز کی دل میں نیت ہے. زبان سے تو ہے علم کی خواہش کہ میں اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتا ہوں, لیکن دل میں خواہش اس کے علاوہ کوئی ہے, تو اس ٹائپ کا علم مرشد دے دیں گے, ویسی ہی تربیت آپ کی کر دیں گے. تو وہ قصور انسان کا اپنا ہوتا ہے, قصور اخلاص کا ہے. تیسرا ان کا سوال ہے کہ ورد کا عطا ہونا، کہ مثلا مرشد کا اپنے کسی ایک اسٹوڈینٹ کو انسٹرکٹ کرنا کہ آپ لفظ اللہ کا ورد شروع کر دیں، اور کسی دوسرے کو کہنا کہ تم اللہ کا نماز عصر کے بعد 1000 دفعہ پڑھا کرو. یہاں شروع دنوں ہی میں ایک چیز میں نے عرض کی تھی کہ جس طرح سے ہماری باڈی کیمسٹری سب کی علیحدہ علیحدہ سے ہے، اسی طرح روح کی کیمسٹری بھی علیحدہ علیحدہ سے ہے. روح کی کیفیات بھی ہر انڈیویجول کی اپنی ہے. اگر میرے جیسا بندہ کہیں مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور جا کے چلیے اس سوال کو میں نیکسٹ ٹائم جب سورہ الاعراف کا کی آیت کی تشریح کروں گا تو اس میں جواب مکمل کر دوں گا، کہ ٹائم زیادہ ہو گیا تو مجھے پتا نہیں چلا، ایم سوری، 5 منٹ فالتو لے گیا میں آپ کے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی اتوار بشرط زندگی ملاقات ہوتی. السلام علیکم.